ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत छठा स्कंद चौथवा अध्याय श्लोक नंबर 14 बंद करें। य समुत्पतितं देह आकाशान मनुबुलबुलबणम आत्मजिज्ञासया यच्छेत् सगुणानतिवर्तते। य समुत्पतितं देह आकाशान मनुमूलबणम आत्मजिज्ञासया यच्छेत् सगुणानतिवर्तते। य समुत्पतितं देह आकाशात् मनुमूलबणम आत्मजिज्ञासया यच्छेत् सगुणानतिवर्तते। कोई और कोई गाना चाहिए माता जी? या जो कोई समुत्पतितम सहसा जागृत हुआ देहे शरीर में आकाशात आकाश से मन्युम क्रोध उल्बणम शक्तिशाली आत्मजिज्ञासया आध्यात्मिक या आत्म साक्षात्कार के प्रति पूछताछ से यच्छेत् दमन करता है स वह व्यक्ति गुणान भौतिक प्रकृति के गुणों को अतिवर्तते लांग जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की जिज्ञासा करता है और इस तरह अपने शक्तिशाली क्रोध को जो शरीर में सहसा जागृत हो जाता है मानो आकाश से गिरा हो उसे दबाता है वो भौतिक प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जब कोई क्रोधित होता है तो अपने आप को और अपनी स्थिति को भूल जाता है, किंतु यदि वह अपनी स्थिति पर ज्ञान द्वारा विचार करता है तो प्रकृति के गुणों को लांग जाता है। मनुष्य सदा से काम इच्छाओं क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या इत्यादि का दास रहा है, किंतु यदि वह आध्यात्मिक प्रगति में पर्याप्त बल प्राप्त कर लेता है तो वो उनको वश में कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसा नियंत्रण कर लेता है वो सदैव दिव्य पद पर स्थित हो जाता है और भौतिक गुणों द्वारा अस्पृश्य रहेगा। ऐसा तभी संभव है जब पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा रहे, जैसे कि भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, माम च यो व्यभिचारे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका अनुवाद है, जो सारी परिस्थितियों में एकांत भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है और नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। मनुष्य को भक्ति में लगाकर कृष्ण महामनामृत आंदोलन उसे क्रोध लोभ मद द्वेष काम से सदा परे रखता है। मनुष्य को भक्ति में सेवा करना चाहिए, नहीं तो वो प्रकृति के गुणों का शिकार बनता रहेगा। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति सपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज मेरा सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद मुझे वृंदावन धाम के दर्शन हुए और अब सब वैष्णवों का संग मिल रहा है। वृंदावन धाम ये अप्राकृत धाम है, वो भौतिक क्षेत्र से परे है। परस्तस्मात् भावन्य व्यक्त व्यक्त सनातन। तो वृंदावन धाम जो है एक्चुअली भगवान से अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान और भगवान से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सब चिन्मय वस्तु हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रायम इंद्रिय। अतः श्री कृष्ण नाम आदि मतलब कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का धाम, ये सब स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। न भवेत ग्रायम इंद्रिय, इसको भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। लेकिन सेवोन मुखे ही जिह्वादो, जब कोई सेवा करता है भगवान के नाम की, भगवान के धाम की, भगवान के ड्यूटीज के, तो फिर वो भगवान के दिव्य तत्व को समझ सकता है। तो जब हम धाम में रहते हैं भगवान की दया से, चाहे कोई थोड़े समय के लिए आए मेरे तरह, जो मैं आज दो तीन दिन के लिए यहाँ पर हूँ, या आप में से कई जो भाग्यशाली हैं जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो जब भी धाम में रहने का अवसर मिले समझना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है। और यहाँ पर निवास का हर एक क्षण का उपयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं एक भक्त का एक लक्षण है अव्यर्थ कालम। अव्यर्थ कालम का मतलब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि हमारी आयु बहुत सीमित है, हमें पता नहीं कितने क्षण इस धरती पर रहना है। इसलिए हर क्षण ये सोचना चाहिए कि ये मेरे आखिरी क्षण हो सकता है, ये मेरे जीवन का आखिरी क्षण हो सकता है, मुझे ज़्यादा नाम जप करना है। ये आखिरी क्षण हो सकता है, मुझे ज़्यादा भगवान का ध्यानपूर्वक दर्शन करना है, ये आखिरी क्षण हो सकता है, मुझे ध्यानपूर्वक लेक्चर सुनना है, ये आखिरी प्रसाद हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जितना डाइजेस्ट हो। तो ये इमरजेंसी की भावना बहुत ज़रूरत है कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए, फीलिंग ऑफ इमरजेंसी कि यस मुझे बहुत जल्द से जल्दी कृष्ण के भक्ति में प्रगति करनी। और इसके लिए जो स्पेशल जो दिन आते हैं, जैसे दो दिन पहले एकादशी थी, अभी परसों पूर्णिमा है, ये बहुत विशेष दिन है। अभी परसों सनातन गोस्वामी का 16 तारीख को तिरुभाव दिवस है, तो कुछ मैं कल शाम को और परसों शाम को दो दिन उसके ऊपर चर्चा करूँगा, और आज भी शायद थोड़ा सा, क्योंकि सनातन गोस्वामी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा पहले आज के श्लोक के बारे में बताना चाहूँगा और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी का जीवन का। आज के श्लोक में क्रोध का वर्णन किया गया। आप में से कितने भक्त हैं जिसको कभी कभी क्रोध आ जाता है? हरी, कौन है जिसको नहीं आता है? हरे कृष्ण। इवन प्रभुपाद जी को भी क्रोध आता था, लेकिन फर्क क्या है? जब प्रभुपाद जी को क्रोध आता था, वो क्रोध भी भगवान की सेवा के लिए होता था, तो क्रोध को रोका नहीं जा सकता। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये जो भी अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, इनको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे काम, काम मतलब लस्ट, इंद्र तृप्ति की इच्छा है, तो काम, काम को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए? कि कृष्ण के भक्ति की कामना करना, कृष्ण की सेवा की कामना करना। लोभ, संसार में लोगों को लोभ होता है पैसे का, कि मेरे पास बहुत सारे प्रॉपर्टी आ जाए, मुझे बहुत धन मिल जाए। एक लखपति सोचता है मैं करोड़पति बन जाऊं, एक करोड़पति सोचता है मैं अरबपति बन जाऊं, अरबपति सोचता है मैं फिर खरबपति बन जाऊं, और खरबपति बनते बनते फिर वो नरकपति बन जाता है। ये नेचुरल प्रोग्रेशन हो जाता है ना। हमें लोभ किसके लिए करना चाहिए? लोभ साधु संग हरि कथा। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे मेरे मित्र हैं महत सेवा प्रभु, ये बेंगलोर में बहुत अच्छा जॉब कर रहे थे, और मतलब 45 या 48 उम्र हुई, और फिर प्रभु जी को लगा कि अभी थोड़ा बैलेंस अच्छा हो गया है, तो सब कुछ छोड़ के बस हरि कथा के लिए लोभ करते। वो पुणे में होते हैं, अभी वृंदावन में आए, कोई काम से दिल्ली आए थे, तो बोले नहीं वृंदावन जाना है मुझे। और इतना लोभ कृष्ण कथा के लिए, भागवत सुनने के लिए, खाली ये आज सुबह का क्लास नहीं, दिन भर जहाँ भी भागवत सुनने को मिले, जहाँ भी भागवत पढ़ने को मिले, ऐसा लोभ होना चाहिए। जब रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जब मैं दो अक्षर बोलता हूँ कृष्णा, आपके आवाज़ से लग रहा है आपने कल निर्जला उपवास रखा था, तो जोर से बोलिए कृष्णा
कृष्णा।
जब मैं दो अक्षर बोलता हूँ कृष्णा, तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास लाखों लाखों जीवा हो, और जब ये नाम मेरे कानों में प्रवेश करता है कृष्णा, तो मेरी इच्छा होती है कि लाखों लाखों कान हो। इसको बोलते हैं लोभ। ये लोभ बहुत अच्छा है। संसारी लोभ तो आप कितना लोभ करो भी तो भी आपको ज़्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है। जो अगर लोभ करने से ही पैसा मिलता होता तो भारत का हर एक व्यक्ति करोड़पति बन जाता है ना, लेकिन इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात है, अगर आपको धन ज़्यादा मिल भी जाता है तो फिर और इनकम टैक्स के प्रॉब्लम और चोरों से डर, और आजकल तो चोर भी नहीं, आजकल सोफिस्टिकेटेड चोर हैं। आजकल कई लोग हैं जो एमटेक डिग्री प्राप्त करने के बाद, सॉफ्टवेयर में सीखने के बाद सीखते हैं कैसे दूसरे के अकाउंट से चोरी करने। ये एजुकेटेड चोर हैं, ऐसे नहीं, संसार के साधारण चोर नहीं हैं, बीटेक एमटेक करने के बाद चोरी कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ज़्यादा धन का भी? जो कर्मों में लिखा है वो मिलना ही है। अभी मेरे एक मित्र बोले थे, प्रभु जी मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत अमीर हैं, और उनका देहांत हो गया अमेरिका में, मतलब जो बहुत दुख की बात है। बोले दुख की बात नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भारत में नहीं मरे, वो अमेरिका में एक अच्छे हॉस्पिटल में मरे, यू नो, 10 लाख रुपए खर्च करके। मैंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, जब मरना ही है तो कहीं पर मरना है। तो धन के लिए लोभ करना ये मूर्खता है, क्योंकि मिलना उतना ही है जितना आपको मिलना है। लेकिन हरि कथा के लिए लोभ करना, अगर आप सोचते मैं ज़्यादा कथा सुनूँ, ज़्यादा मंदिर में सेवा करूँ, ज़्यादा मैं राधा श्याम सुंदर के लिए कोई कोई भी सेवा कर सकूं, दैट लोभ इज गुड, ग्रीड। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए प्राइस क्या है, मूल्य क्या है, कौन बताएगा मूल्य? लौल्यम, तत्र लौल्यम अपि मूल्य, इंटेंस ग्रीड। लौल्य मतलब खाली लोभ नहीं, बहुत ज्यादा लोभ, तरसना भगवान के लिए। जब आप भगवान के लिए तरसोगे, भगवान के लिए रोओगे, तो फिर भगवान के दर्शन होंगे। अभी वृंदावन में तो भगवान हमेशा रहते हैं, वृंदावन में भगवान नित्य रूप से रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पदम एकम न गच्छेत, कई सारे महात्माओं को दर्शन भी होते हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहे दर्शन, आपको क्यों नहीं हो रहे दर्शन? ऐसा नहीं है कि भगवान खाली भगवे कपड़े वाले साधुओं को ही मिलते हैं, या खाली जिनकी शिखा बहुत लंबी है उसी को मिलते हैं, या जिन्होंने बहुत गर्मी में तपस्या की है, या सर्दी में बद्रीनाथ में रह के आते हैं उनको मिलते हैं। भगवान किसको मिलेंगे? जो चाहेगा उसको मिलेंगे, बस चाहने की देरी है, बस आपकी इच्छा प्रबल होनी चाहिए। आई मस्ट सी कृष्ण। प्रभुपाद जी एक श्री प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं, वन शुड प्रभुपाद जी बोलते हैं वन शुड डेवलप द डिजायर टू सी कृष्णा फेस टू फेस इन दिस लाइफ। ऐसा इच्छा होनी चाहिए इसी जन्म में भगवान के दर्शन हो जाए, तरसना चाहिए कब कब मेरे को दर्शन, कैसे दर्शन होंगे, उसके पहले नाम में रुचि कैसे आएगी। से भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कबे हबे बोलो से दीना मार अपराध घुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बल हो बे हृदय संचार। बोल रहे हैं भगवान कब मेरे को नाम में रुचि आएगी, कब मेरे अपराध दूर होंगे। और कुरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देह गदगद वचन, कब नाम लेते लेते मेरा शरीर पुलकित हो जाए। तो नाम में जब अटैचमेंट आएगा तब फिर भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि नाम जो है वो भगवान का अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान का सबसे दयालु रूप जो है वो हरि नाम है। श्री हरि नाम जैसे ऑल्टर पे पुजारी भगवान को माला पहनाते हैं, स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, ऐसे हमारे हृदय के ऑल्टर में हरि नाम को चंदन लगाना है। वो चंदन क्या है? ध्यान पूर्वक जप करना, माला पहनाना है। माला क्या है? प्रार्थना करनी। तब तो ठाकुर जी विराजमान होंगे हमारे हृदय में। अभी मैं एक सप्ताह के लिए जगन्नाथ पुरी में था, गुंडीचा मार्जन के लिए और रथ यात्रा के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। आप में से कितने भक्त थे इस साल गुंडीचा में, कोई थे रथ यात्रा में? कितने भक्तों ने टीवी में देखा होगा, ओडिशा टीवी लाइव? तो भगवान के आने से पहले गुंडीचा मंदिर को सफाई किया जाता है। क्यों सफाई करते हैं? क्योंकि भगवान है। हम नहीं चाहते कि कोई अपवित्र स्थान में भगवान को विराजमान किया जाए। तो कई भक्त चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो करीब 100 भक्त मिलकर मंदिर की सफाई करते। कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, मे भी हमारे इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर से थोड़ा सा बड़ा होगा, नहीं गुंडीचा मस्जिद जो अंदर का भाग है उतना बड़ा नहीं है, कि 100 डिवोटीज मिलकर सफाई कर। और महाप्रभु क्या बोलते हैं हरे को? पहले बोलते हैं सफाई करो। सफाई करने से पहले हर एक भक्त को अपने हाथों से माला पहनाते, हर एक भक्त को चंदन लगाते हैं। मतलब भगवान दिखा रहे हैं कि जो भी ठाकुर जी की सेवा कर रहा है वो पूजनीय है। मान लो आपको भगवान अध्यक्ष बनाते हैं, अथॉरिटी बनाते हैं, और आपके अंडर 10-15 लोग काम कर रहे हैं, तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हम सोचते हैं कि मैं निर्णायक हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, और ये सब मेरे दास हैं। हमें भूल जाते हैं कि हम सभी दास हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैचे नचा इसे तैचे करे नृत्य। कृष्ण से नचाते हैं, सब नाचे। तो महाप्रभु अपने हाथों से हरेक भक्त को माला पहनाते, हरेक भक्त को चंदन लगाते। कितना वैष्णवों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए ये भगवान दिखा रहे हैं। अगर भगवान भी भक्तों को चंदन लगाते हैं तो हम कौन इतने महान है कि दूसरों का आदर नहीं करें। हम तो तुच्छ भक्त है, भक्त भी नहीं है, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये महाप्रभु के पार्षद हैं, वो भी एक दूसरे का इतना सम्मान करते। तो महाप्रभु सबको माला पहनाते, फिर सबको सब भक्त झाड़ू लगाते हैं प्रेम से, 100 devotees। और भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले हर एक को सफाई करने के बाद बोलते हैं, जितना आपने कचरा एकत्र किया है उसका एक पैकेट बनाओ और उस पर अपना नाम लिखो। हर एक भक्त ने एकत्र किया वो नाम लिखा जाता, और फिर जो अच्छा सफाई करता है उसको बोलते हैं भाला भाला, बहुत अच्छा है, अब दूसरे को सिखाओ। और जिसने अच्छा नहीं किया है उसको बोलते हैं तुम ठीक से नहीं कर रहे, आप सीखो इनसे। यहाँ तक कि जो अच्छा नहीं करता उसको फाइन भरना पड़ता है। हाँ, फाइन, फाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? जुर्माना। यस, फाइन इज फाइन, फाइन डिवोट इज फाइन। लेकिन फाइन क्या है आपको आश्चर्य होगा, उन्हें क्या जुर्माना भरना पड़ता है उनको? मालपुआ और खीर, जगन्नाथ जी का प्रसाद। मतलब समझो मैंने ठीक से सफाई नहीं की तो मुझे अपने पैसे से मालपुआ खरीदी करके देना पड़ेगा सफाई कमेटी को, और जिसने अच्छी सफाई की है उसको इनाम मिलेगा। वो क्या मिलेगा? मालपुआ और खीर। ऐसे मंदिर का कोई खर्चा भी नहीं होगा। एक है जो फाइन भरने वाले और दूसरे इनाम लेने वाले। तो महाप्रभु अपने हाथों सफाई करते हैं, एक बार पूरा मंदिर सफाई कर लेते हैं और फिर बोलते हैं अब एक बार और सफाई करना है। क्यों भाई, बार बार क्यों टाइम वेस्ट करना? यस, कौन बताएगा इसको उत्तर? भगवान दो बार क्यों साफ कर रहे हैं? यस, नहीं, भगवान पहली बार में सफाई करते हैं बड़े बड़े स्थूल कचरे के दाने निकालने के लिए, जो घास के तिनके हैं, मिट्टी के कण हैं, वो निकालने के, और बाद में छोटे छोटे सूक्ष्म दानों को निकालने के। भगवान दिखा रहे हैं कि जो भी सेवा करना है वो पूरे हृदय के साथ करने चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं थरोली, बहुत गहराई के साथ। कोई भी सेवा को उटपटांग ढंग से नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना, चलो पूरी कर ली बस, अभी क्या मेरे जिम्मे लगाया गया करना ही पड़ेगा, नहीं। थोड़ा सा सेवा करो लेकिन हृदय से करो। बस आज भगवान ने मुझे चुना है फूल माला बनाने के लिए, पूरे सृष्टि में असंख्य असंख्य जीव हैं, उसमें से मुझे राधा श्याम सुंदर ने फूल माला बनाने के लिए सेवा, इससे बढ़कर क्या हो सकता? या आपको सब्जी काटने की भी सेवा हो, कितना मेरा सौभाग्य, हजारों जन्मों के बाद भगवान के लिए एक आलू काट रहा हूँ, या भगवान के लिए फ्रूट काट रहे, या भगवान की एक आरती कर रहे, या किसी वैष्णव के लिए कोई सेवा कर रहे। तो भक्ति में जो है प्रगति इस पर निर्भर नहीं है कि हम कितने वॉल्यूम सेवा करते हैं, कितना तीन बार हरि बोल हो रहा है हमारे लिए, हमें भगवान ये देखते हैं कि कितने तन्मयता के साथ हम सेवा कर रहे हैं, कितने गहराई के साथ हम नाम ले रहे हैं। क्योंकि नाम जो है वो तो कल्प वृक्ष की तरह है, जैसे कृष्ण सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं वैसे श्री नाम प्रभु भी। तो जब हम नाम लेने बैठते हैं इस भावना से नाम लेने कि मेरा और श्री राधा श्याम सुंदर का साक्षात्कार हो रहा है, मुझे आज मुझे भगवान राधा श्याम सुंदर से अपॉइंटमेंट मिला है, 1-to-1 अपॉइंटमेंट, भगवान आज मेरी जीवा के ऊपर दया कर कर प्रकट हो रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो अपने आप आपको नींद नहीं आएगी। जब आप में से कोई है जिसको जब जब में नींद आती है, हाथ ऊपर कर, सभी को आती है, मुझे भी आती है, लेकिन हमें ये सोचना है, संघर्ष करना है कि ये नाम जब जो है ये 2 घंटे का समय है, ये निश्चय करेगा कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा या पुनर्जन्म लूंगा। मेरे नाम जब की क्वालिटी पे निर्भर है कि या तो मैं वापस इसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त करूंगा या फिर से मैं जन्म लेके ABCD AA EE सीखूंगा, फिर से मैं माँ के गर्भ में कष्ट सहन करूँगा और दूसरों को भी कष्ट। एक डिवोटी बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे थे पूना में, बता रहे थे प्रभु जी हमें जब अच्छा करना चाहिए, नहीं तो और किसी माता जी को और 9 महीने तकलीफ सहन करना पड़ेगा हमारे लिए, और पता नहीं कितने सारे भागवतम क्लास हम डिस्टर्ब करेंगे, है ना। बच्चे जब छोटे होते हैं माता सुनना चाहती हैं और सबका माइंड डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए लोक कल्याण की दृष्टि से अच्छी भक्ति करना अच्छा है, जिससे हम किसी को कष्ट नहीं दें, इसी जन्म में भगवत धाम जाएं। बस इंटेंस चैंटिंग, और कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सन्यासी बने या बड़े पोस्ट पे बने या आपको लोग बहुत पॉपुलैरिटी हो या आपके पास करोड़ रुपए का बैलेंस हो या कितने भक्त आपको जानते हों, ये सब एक्सटर्नल सिचुएशन। पर भगवान के नाम से आपका कितना प्रेम है, कितना आप भगवान के नाम के रस में डूब रहे हो, वो निश्चय करेगा कि आप भगवान को प्राप्त करते हैं या वापस लौट कर। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी शुड चैंट द होली नेम विथ प्रॉपर फीलिंग्स, बड़े ध्यानपूर्वक जप करना, अटेंशन के साथ पुकारते हुए। अभी कुछ महीने पहले नवंबर में मैं जगन्नाथपुरी में था एक बड़ी यात्रा में, और वहाँ पर कुछ दो भक्त जो हैं वो थोड़ा दूरी पे समुद्र में स्नान करने गए। समुद्र स्नान तो आप जानते हैं अच्छा है, पवित्र है, लेकिन बहुत डेंजरस भी है। जगन्नाथपुरी का समुद्र है स्पेशली, एक समय तो बहुत हल्का लगता है, फिर अचानक ऐसे वेव्स आ जाते और आपको अंदर खींच लेते। आपको नहीं आता तो नहीं जाना चाहिए, आपको आता है तो ध्यान से जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम क्या होता है, आपको आता नहीं है और लगता है आता है मुझे स्विमिंग, तो वो बहुत डेंजरस है। तो ये दो भक्त थे और अचानक उनको पता चला कि वो गहराई में डूब रहे हैं, कि जीवन खतरे में था, और काफ़ी दूर पर करीब 0.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे कुछ भक्तों को उन्होंने देखा। उन्होंने जोर से पुकारा, हेल्प हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। और एक रशियन भक्त थे और एक पूना से एक भक्त थे, उन्होंने जल्दी से जाकर सही समय पर उनको बाहर निकाला। हेल्थ खराब था, भुवनेश्वर में अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन अब भगवान जगन्नाथ जी कृपा से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा हमें भगवान को नाम को पुकारना चाहिए, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति मदद के लिए पुकारता है। अगर आप डूब रहे हो और अगर कोई आपको दूर एक नौका दिखाई पड़ती है तो आप कैसे पुकारोगे, अरे वो मैं डूब रहा हूँ मैं डूब रहा हूँ। हो सके तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, हरी बोल हरी वो प्लीज प्लीज हेल्प हेल्प। तो ये एक एंग्जाइटी होनी चाहिए जब में, ट्रांसेंडेंटल एंग्जाइटी। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम शुद्ध भक्त हो गए हैं, लेकिन शुद्ध भक्त होने का संघर्ष करना चाहिए, उसके लिए एक ट्रांसेंडेंटल ग्रीड, एक लोभ चाहिए भगवान के नाम। तो दैनिक एटलीस्ट जो फर्स्ट 16 माला हम करते हैं, कोशिश करना चाहिए कि पूरे अटेंशन के साथ। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बहुत सुंदर पॉइंट बताते हैं, वो बताते हैं कि बड़े से बड़े विपत्ति, बड़े से बड़े तकलीफ, बड़े से बड़े बाधाएं दूर हो जाते हैं अगर आप श्री शचिनंदन गौरंगा महाप्रभु को याद करें। और ये श्री चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, ऐसे कथनचंद स्मृति जस्मि दुष्करम सुकरम भवे। दुष्करम जो बहुत डिफिकल्ट है, जो बहुत मुश्किल है, वो कार्य भी आसान हो जाता है, कैसे, अगर आप याद करते हो गौरंग महाप्रभु गौरंग। तो हम जब करने बैठते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरुदेव हमें सलाह देते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों को ध्यान करो। हम रोज गौर निताई का दर्शन करते हैं, उनके चरणों को अपने हृदय में अंकित करो, याद करो, और भगवान श्री गौर हरि से प्रार्थना करो, क्योंकि वही प्रेम दाता है, वही नाम दाता है, उन्होंने ही युग धर्म सिखाया है हमें, और सारी परंपरा उनसे ही शुरू होती है। तो उनसे अगर हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे नाम जप में रुचि आ जाए, मेरे नाम जप में जो अपराध आ रहे हैं वो दूर हो जाए, तो उनकी कृपा से क्या मुश्किल है, भगवान गौरांग की कृपा से क्या मुश्किल है। एक अंधा व्यक्ति आकाश के तारे देख सकते, एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर सके, और एक गूंगा व्यक्ति सुंदर कविता का गान कर सके, तो भगवान श्री गौरहरि का आश्रय लेना, अकेले नहीं उनके साथ सांगो पंगाश्र पार्षदम। इसलिए हम जब शुरू करने से पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदा गौर भक्तवृंद, वी प्रे फॉर दी मर्सी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जस्ट बाय रिमेम्बरिंग दी पंचतत्व मंत्र वन बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल ऑफेंसेस, जितने भी अपराध हैं सब दूर हो जाते हैं पंचतत्व को याद करने से। पहले तो हमें अपराध करने नहीं हैं, लेकिन फिर भी हो जाते हैं अपराध, तो उनको दूर करने के लिए पंचतत्व का आश्रय लें। और ये भावना से प्रार्थना करते हुए, कृष्ण ये हृदय आपका ही घर है, आप इस घर में फिर से आ जाइए। अब हमारी स्थिति ऐसी है, जैसे आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य छह अनर्थ आ गए, इन्होंने हमारे हृदय पे कब्जा कर लिया। एक्चुअली हमारा हृदय भगवान गोपीनाथ का घर है, भगवान श्याम सुंदर का महल है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो गया कि सारे अनर्थों ने हमारे हृदय पे कब्जा कर लिया। हमें इनको निकालने अनर्थों को, ये कुछ कुछ ऐसे है, जैसे आप जानते हैं भारत का जो कश्मीर का इलाका है वो है तो भारत का, लेकिन वो पाक ऑक्यूपाइड बोलते हैं कश्मीर, है ना, जो टेररिस्ट और लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो उनको दूर करने के लिए जैसे पिछले 4-5 महीने पहले मुंबई हमारे कश्मीर में बॉर्डर से कुछ वायु हमारे एयरफोर्स के कुछ पायलट्स जाकर आक्रमण किया था और उस इलाके में बॉम्ब्स फेंके गए थे, जैसे हमारे हृदय में भी ये जो माया के अनर्थ आ गए उन्होंने कब्जा कर लिए। जैसे POK बोलते हैं, ये MOH है, माया ऑक्यूपाइड हार्ट। तो ये माया को दूर करना है तो स्ट्राइक करना है। बॉम्ब क्या है? हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कम से कम 16 फायरिंग करना तो जरूरी है, और ज़्यादा किया तो और सेफ है। और ये जो आक्रमण आप में से किसी को मालूम है, फरवरी 26 को किया गया था ये बालकोट में, और किस समय किया गया था किसी को मालूम है? सवेरे के समय या 3:30 बजे। तो मेरे को ये लगा ये बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि मंगल आरती का टाइम है। तो जो वक्त सुबह उठ के मंगल आरती के समय से ही जप करते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि दोपहर को क्यों नहीं किया गया आक्रमण, क्योंकि दोपहर को आक्रमण करते हैं तो वो सब जाग रहे होते, इसके पहले ही उसको नष्ट कर दें। दे टू टेक इट सीरियसली, अनर्थों को दूर करना। और एक पॉइंट है जो प्रभुपाद जी बताते हैं क्रोध के बारे में, कि क्रोध जो है भगवान की सेवा में कैसे लग सकता है, उसके दो उदाहरण बताते हैं प्रभुपाद। किसी को मालूम है क्या उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, क्रोध कैसे भगवान की सेवा में लग सकता है? हनुमान जी ने क्रोध दिखाया। अभी हनुमान जी ने पूरे लंका नगरी को जला दिया। अभी ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रेम से जलाया, चलो ओ लंका हरि बोल, चलो आग लगाने के लिए क्रोध जरूरी है, नहीं बिना क्रोध के लड़ाई नहीं होती। कभी देखा कोई प्रेम से ऐसे लड़ाई कर रहे अर्जुन से, धनुष बाण चला रहे हैं, दुर्योधन जी हाई हरि बोल, ये तीर स्वीकार करिए। अर्जुन के आंखों में क्रोध है, सावधान कर्ण, अभी तुमको मैं यमराज के दरबार में पहुंचा दूंगा। और फिर कर्ण भी ऐसे जवाब देते, तो क्रोध जरूरी है लड़ाई के लिए। जैसे अगर आपको कुछ भगवान के लिए खीर बनाना है या चावल बनाना है तो अग्नि जरूरी है, बिना अग्नि के कोई पकता नहीं है। इसे क्रोध जरूरी है सेवा में भगवान की, लेकिन वो कैसे? भगवान के भक्त द्वेषी। क्यों हनुमान जी ने क्रोध दिखाया? क्योंकि रावण ने सीता का अपमान किया था, और जब हनुमान जी गए सीता का पता लगाने के लिए और रावण को समझाने का प्रयास किया, उन्होंने बहुत सरल भाषा में पहले रावण को समझाया कि तुम सीता को लौटा दो, तुम कुत्ते की तरह हो, जैसे घर का मालिक नहीं होने पे कुत्ता घी का बर्तन चुरा लेता है, वैसे तुमने सीता का अपहरण किया है, तुम सीता को लौटा दो। लेकिन फिर रावण सुनने को तैयार नहीं था। अनंत में जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, एक्चुअली हालांकि उनकी पूंछ में आग लगाई गई उनको बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, किसी को पता है क्यों गर्मी नहीं लगी? क्योंकि सीता महारानी प्रार्थना कर रहे थे अग्निदेव से, हे अग्निदेव अगर मैंने भगवान राम के सिवाय किसी का चिंतन भी नहीं किया हो तो ऐसा हो कि जब हनुमान जी की पूंछ में आग भी लगे तो उनको गर्मी नहीं लगे। तो उनकी पूंछ में आग लगाई गई, उनको लग रहा था बस सिंपल आइसक्रीम जैसे है ना, कुछ नहीं, और वो पूरी लंका नगरी जला दी। हनुमान जी ने एक्चुअली दया की, ये हनुमान जी ने रावण को भी एक सबक सिखाया। बस जैसे ही उनको पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने अपने सारे ब्रह्मास्त्र को तोड़ दिया और फिर एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग जलाते हुए पूरी लंका नगरी। और इंटरेस्टिंग है, पूरी लंका नगरी जलाई गई और जलाने का खर्चा भी रावण के अकाउंट से ही आया पूरा। उन्होंने कुछ हमने यानी पाक का बॉम्ब लेके पाकिस्तान पर डाला है ना, ऐसे कुछ हो। हनुमान जी बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये क्रोध भक्त द्वेषी, और ऐसा ही क्रोध भगवान चैतन्य महाप्रभु भी दिखाते हैं। क्रोध जनरली हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु बहुत नम्र हैं, सबको सिखा रहे हैं, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा, लेकिन वो क्रोध भी दिखाते हैं। आपको मालूम है भगवान की लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु का क्रोध कभी आता है? जगाई मदाई की लीला में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, मेरे को बहुत प्रिय है वो लीला, क्योंकि हम मेरा कैरेक्टर भी उसी तरह से है। जगाई मदाई की लीला सुनने से हम पवित्र हो जाते, अलग की कहानी कई बार सुनी। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास प्रति घरे जाए मागी यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। सुनो नित्यानंद हरिदास, जाओ घर घर में जाओ, आश्रम में जाओ, सब जगह पे जाओ और सबको बोलो कृष्ण का नाम लो, उनको बोलो कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही प्राण धन है, और मेरे को शाम के आके रिपोर्ट दो कि कैसा हुआ पृथ्वी। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर घर घर जा रहे थे, लेकिन कई जगह पर तो लोग स्वागत करते, आइए आप महान भक्त हो, आइए आपको भगवान का संदेश सुनाओ, लेकिन कई जगह पर लोग दरवाजा बंद कर देते, चोर चोर, ये लोग चोर हैं, ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या चीज कहां पर पड़ी है और फिर रात को आकर चुराने वाले हैं। इस तरह से उनको अलग 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 लोगों से अलग अलग व्यवहार की प्राप्ति होती। एक दिन जब वो मार्केट में थे, उन्होंने दो भयानक शराबियों को देखा जिनका नाम था जगाई मधाई। उन्होंने किसी से पूछा ये कौन है ये दो व्यक्ति, किसी ने बताया कि एक्चुअली ये दोनों ब्राह्मण थे, इनका नाम था जगदानंद और माधवानंद, बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन खराब संग के कारण ये चरित्र उनका नाश हो गया और ब्राह्मण की क्रियाओं को छोड़ करके वो दुष्ट व्यवहार करने लगे। जगाई मधाई बहुत खतरनाक है, हमको वार्निंग दे रहे हैं वहां मत जाना, वो हर समय किसी को मारना, घर में आग लगाना, परस्त्री संग करना, चोरी करना, नियम पूर्वक नियम भंग करते थे, इतना उनका व्यवहार बुरा था। और जगाई मधाई इतने ज्यादा एक्टिव थे, कभी समय बर्बाद नहीं करते, जब कोई नहीं मिलता तो एक दूसरे को मारते थे, आप मत जाना वहां पर। लेकिन नित्यानंद प्रभु सोचने लगे जगाई मधाई अगर ये दोनों भक्त हो गए तो महाप्रभु की ख्याति फैल जाएगी, कि सब बोलेंगे कि महाप्रभु कितने दयालु हैं कि जगाई मधाई भी भक्त हो गए। धीरे धीरे उनके पास में गए और उनसे हाथ जोड़कर नम्रता से रिक्वेस्ट किया, अकरोद परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाए। नित्यानंद प्रभु घर घर जाते, अदम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दीछे न बिलाई। वो अधम पतित के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं हरि नाम लो, जा रे देख तारे कहे तंत त्रिनाधारी अमरे की नियल बोलो गौर हरि। वो सबसे दांत में तिनका रख के रिक्वेस्ट करते, कृष्ण का नाम लो, गौरंगा का नाम लो, गौरंगा। तो वो जगाई मधाई के पास भी गए बहुत नम्रता के साथ और जगाई मधाई को बहुत गुस्सा आ गया, बोले तुम कौन हो हमको बोलने वाले? तब नित्यानंद प्रभु ने बताया मेरा नाम है अवधूत। अवधूत तुम हमें क्यों अपने क्यों क्यों हमारे कार्यों में बाधा पैदा कर रहे हो और हमको मारने के लिए आए? नित्यानंद प्रभु जो बलराम है, जो अनंत शेष है, जो पूरे आध्यात्मिक जगत को सपोर्ट कर रहे हैं, वो दौड़ने लगे और ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं वही भाग रहे। इमेजिन करिए बलराम जी और ब्रह्मा जी भाग रहे हैं और रावण और कुंभकर्ण पीछा कर रहे हैं उनके। या जगह मदा यानी रावण कुंभकर्ण या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप भाग रहे तेजी से, और जगाई मदाई बहुत मोटे थे, शराब पीते थे, मांस खाते, उनका शरीर मोटा था। शरीर मोटे व्यक्ति को तेजी से दौड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मांस बहुत ज़्यादा था, वेलोसिटी कम हो जाता था, तो धीरे स्लो हो गए। और उनको किसी न किसी को मारना है, अब एक दूसरे को मारने लगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। और अब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हाँफते हुए भगवान गौरंग महाप्रभु के पास बैठे। एक बहुत सुंदर दृश्य था, जैसे चंद्रमा के चारों ओर तारे होते हैं, भगवान शची नंदन के चारों ओर उनके पार्षद, और भगवान गौरंग महाप्रभु के पास आकर नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु आप दया करो, आप उद्धार करो ये दो पापी जगाई और मदाई का। आज हम उनको उपदेश करने गए लेकिन वो हमारे पर आक्रमण करने आए, हम उनका उद्धार नहीं कर पाए, आप दया करो। महाप्रभु मुस्कुरा कर बोले जब उन्होंने आपका दर्शन किया उनका उद्धार निश्चित हो गया। ये समय की बात है कि वो आप सबके साथ संकीर्तन में भाग लेंगे। चलिए जब भी हम किसी वैष्णव से मिलते हैं तो हम भक्त नहीं भी हों, अगर महाभागवत भक्त को मिलते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है। कल मैं लौट रहा था तो वहाँ पर हमारे अजय गुरुकुल से आ रहा था, तो एक गुरुकुल के एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि मैं प्रभुपाद जी से मिला था 1977 में, मैं बम्बई में रहता था। एक भक्त ने पूछा कि प्रभु जी आप प्रभुपाद जी का लेक्चर अटेंड किए, फिर क्या आपने जप करना शुरू किया कि नहीं किया? मैंने उनको बताया कि एक्चुअली उस समय मैं उतना सीरियस नहीं था, दो चार माला जप करता था। ऐसा लग रहा है प्रभुपाद जी के लेक्चर भी सुने फिर भी जब शुरू नहीं हुआ 16 माला। लेकिन 8-10 साल बाद, न केवल 2 या 3 साल बाद, फिर मैं 16 माला करने लगा और उसके 10 साल बाद मैंने फुल टाइम ज्वाइन की। तो मैं सोच रहा था कि हालांकि मैं इतना छोटा था उस समय, मेरी उम्र 15 वर्ष थी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने उनके दर्शन किया तो एक महाभागवत के दर्शन से ही हृदय में परिवर्तन होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। कितना होता है वो व्यक्ति पर निर्भर है कि कितना वो नम्र है। तो महाप्रभु बोले नित्यानंद को कि जगाई मधाई का टिकट कन्फर्म्ड है, वो वैष्णव बन जाएंगे। इधर जगाई मधाई कभी कभी कीर्तन की आवाज़ सुनते थे, महाप्रभु शिवा सांगन में कीर्तन कर रहे हैं और जगाई मधाई कीर्तन सुन के शराब पीते झूम रहे हैं और झूमते हुए गा रहे हैं शराबी आवाज, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तब एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु उस इलाके से गुजर रहे थे जहाँ पर जगाई मधाई खड़े थे और निमाई को देखकर जगाई मधाई कहने लगे, निमाई तुम बहुत अच्छे दुर्गा देवी के गीत बहुत अच्छे गाते हो। उनको लगा ये दुर्गा देवी के गीत, फिर महाप्रभु ने उनकी ओर देखा ही नहीं, आगे चले। लेकिन थोड़े दिनों बाद नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर फिर से वहाँ पर आए, एक दिन इलाके में पहुँचे और जगाई मदई के पास पहुँचे। ये है वैष्णव। वैष्णव मतलब दूसरों के हित के लिए कष्ट सहन करने को तैयार। नित्यानंद प्रभु को मालूम था कि इनके साथ इनके पास फिर से जाना मतलब जीवन का खतरा मोलना है, लेकिन फिर भी वो गए। बड़ी नम्रता के साथ बोला कि अब एक बार कृष्ण करना, एक बार बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु की बात सुनकर जगाई मधाई बहुत, स्पेशली मधाई बहुत गुस्सा गई, बोले कौन हो तुम? बोला अवधूता, तुम फिर से आ गए। उन्होंने जो मटके से शराब पी रहे थे वो लेकर जोर से आक्रमण किया, नित्यानंद प्रभु के दिव्य देह से खून बहने लगा। नित्यानंद प्रभु इस अवस्था में भी जगाई मदाई के पास हाथ जोड़कर बोलने लगे, आपने मुझ पर आक्रमण किया कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आप बोलो कृष्ण कृष्ण, अभी प्रूफ हो गया कि आप जगाई मदाई नहीं हो। कि जगाई मदाई जब कृष्ण कृष्ण बोलने को तैयार ही नहीं थे, और वो फिर से मारने के लिए आए मदाई, लेकिन जगाई ने रोक दिया। जगाई बोले मदाई मदाई तुम पहचान नहीं रहे, तुम देख नहीं रहे, ये एक महापुरुष है, तुम उस पर आक्रमण कर रहे और वो तुम्हारे कल्याण की कामना कर रहे। इतने में महाप्रभु का समाचार मिला, हरिदास ठाकुर दौड़ते हुए गए, महाप्रभु महाप्रभु आपके भक्त नित्यानंद प्रभु का जीवन खतरे में है। और वो महाप्रभु जो सिखाते हैं कि कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, वो क्रोध से आग बबूले हो गए, चक्र सुदर्शन चक्र पूरे शक्ति के साथ हजारों सूर्य के समान प्रकाशित, और वो चक्र लेकर बस जगाई मदाई का अंत करने वाले। क्योंकि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों एक ही हैं। नित्यानंद प्रभु के अपराध को भगवान कभी नहीं सहन कर सकते। अगर कोई महाप्रभु का अपराध करे तो महाप्रभु शायद माफ करते, लेकिन नित्यानंद प्रभु कभी नहीं सहन करते। उस समय मदाई और जगाई दोनों थर थर कांप रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने भगवान को रोक दिया, प्रभु इनको मत मारो, इनको मत मारो, क्योंकि अगर इनको मारा तो सबको मारना होगा। कलयुग में सब एक ही कैटेगरी के, सब जगाई मदाई। प्रभुपाद लिखते हैं पर्पट में, इन कलयुग का एवरीवन इज मोर और लेस जगाई मदाई। कलयुग में सभी जगाई मदाई, और ये जगाई और मदाई है, मदाई ने मुझे मारा लेकिन जगाई ने तो मेरी रक्षा की। इससे भगवान चैतन्य का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। बोले जगाई जगाई तुमने मेरे प्राण प्रिय नित्यानंद की रक्षा की। तुरंत गले लगा लिया उसको, और तुरंत कृष्ण प्रेम, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम, हरे कृष्ण। कोई आईडीटी नहीं, कोई दीक्षा भी नहीं, डायरेक्ट दीक्षा होगी, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम। और मधाई अभी भी थर थर कांप रहे थे वो चक्र को देख कर। मधाई तुरंत बोले प्रभु हम दोनों पार्टनर हैं, जो इसने किया मैंने किया, मैंने किया इसने किया, अगर आप इसको माफ करो तो मुझे भी माफ करो। और नहीं मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु का आक्रमण किया, लेकिन हाँ अगर आप नित्यानंद प्रभु माफ कर देते हैं तो मैं माफ करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु के पास गए, और बोलने से पहले ही नित्यानंद प्रभु ने माफ कर दिया। बोले आप तो मेरे बेटे की तरह हो, बेटा कोई माँ पिताजी पर लात भी मारता है, पिताजी थोड़ी दोष देखते हैं, बस आपसे भारी नाम लेते रहो। जगाई मदाई प्रेम से भक्तों के साथ डांस करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा कीर्तन कि कभी कभी जगाई मदाई भगवान से टकरा जाते हैं कीर्तन पार्टी में, और महाप्रभु का शरीर काला हो गया। सारे भक्त देख रहे हैं, गौर सुंदर श्याम सुंदर बन गए इन्हें, बड़ा ऑल्टर पे समझो आप जाते हो गौर नेताई और काले रंग में दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान हंस के बोले अद्वैत क्या देख रहे हो, आश्चर्य क्या है? बोले प्रभु मैं देख रहा हूँ आप तो गौर सुंदर हैं कि श्याम सुंदर हैं। तो भगवान ने बताया ये सब जगाई मदाई के पाप मेरे अंदर आ गए, आप कीर्तन करते रहो और कीर्तन करते करते ये पाप चले जाएंगे, और किसके शरीर में जाएंगे? जो वैष्णव की निंदा कर। इधर ये समाचार कहाँ तक पहुँच गया? जगाई मदाई का उद्धार हो गया, समाचार कहाँ पहुँच गया? हाँ यमलोक, ब्रह्मलोक भी यमलोक भी। और यमलोक के चीफ यमराज ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, यमराज के सेक्रेटरी का नाम है, हाँ आप जानते रहते हैं इसलिए जानते होंगे, चित्रगुप्ता। चित्रगुप्ता अरे जगाई मदाई का उद्धार हो गया, मेरे को जस्ट व्हाट्सएप मैसेज मिला है ये बताओ कि क्या क्या इनका पास बैकग्राउंड क्या है, इनका जरा फाइल जरा डेटा खोल के दिखाओ। चित्रगुप्ता बोले प्रभु असंभव कार्य करने के लिए आज्ञा मत दीजिए, हमने 100 क्लर्क रखे हैं फुल टाइम ड्यूटी के लिए, खाली जगाई मदाई का अपडेट करने के, लेकिन वो 100 क्लर्क रिजाइन कर रहे हैं, बोले कि हम जगाई मदाई का अपडेट नहीं कर सकते, हम आत्महत्या कर लेंगे लेकिन ये नौकरी नहीं। जैसे हम लिखते हैं घर में आग लगाया, मर्डर किया, चोरी की, उतने में जब पूरा होता है दूसरे घर में चोरी हो जाती, इसलिए हम VRS ले रहे हैं बिना पेंशन के, हमें नौकरी नहीं चाहिए। और वो जगह मदाई जिनके पापों की राशि एक पर्वत के समान है, भगवान उसको छोटा करके घास के तिनके के समान बना के उसको समुद्र में फेंक दिया। ये सुन के यमराज बेहोश हो गए। अब यमराज के होते हुए लोग पाप करते हैं, यमराज बेहोश हो गए, सारे देवता चिंतित, अभी क्या होगा। ब्रह्मा जी शिव जी दोनों मिलकर आकर यमराज के कान में कीर्तन करने लगे। जब उनके कान में आवाज फैली उच्च स्वर के कीर्तन की, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, इतना जोर से कीर्तन हुआ कि यमराज को होश आ गया। फिर यमराज डांस करने लगे, ब्रह्मा जी नृत्य करने लगे, शिव जी ऐसा डांस करने लगे उनके कपड़े गिर गए, पता ही नहीं चला। कार्तिकेय और गणेश, शिव जी के बेटे का नाम है कार्तिकेय गणेश, वो ऐसा देखे, अरे पापा डांस करे, चल हम भी डांस करें। गरुड़ जी नाच रहे हैं अनंत शेष के साथ। जनरली गरुड़ जी और शेष की दोस्ती नहीं होती, गरुड़ जी सांप को देख के सोचते हैं महाप्रसादी गोविंदे, और अब दोनों गले मिलकर नृत्य करें। और सुखदेव गोस्वामी जो बड़े कथाकार हैं भागवत के, उनके मुख से एक ही शब्द निकलता है, वो क्या है, जगाई मधाई, जय जगाई जय मधाई, जय जगाई जय मधाई। ये भी परम वैष्णव बन गए, जगाई मधाई ने हेड शेव कर दिया, ब्रह्मचारी बन गए, 128 माला जप करने लगे रोज भगवान नित्यानंद प्रभु के पास। और फिर ये जगाई मधाई के उद्धार के बाद फिर भी जगाई मधाई को लग रहा था हम पापी हैं। एक दिन वो नित्यानंद प्रभु के पास गए, बोले प्रभु हमें माफ कर दो, हमने बहुत अपराध। नहीं नहीं आपका कोई अपराध नहीं है। नहीं नहीं लेकिन प्रभु हमने कितने लोगों का मर्डर किया, अभी कैसे हमारे पाप दूर होंगे। हाँ गंगा की सेवा करो, गंगा के किनारे घाट निर्माण करो। तो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से उन्होंने घाट बनाया, मधाई घाट, और वहाँ पर भक्तों की सेवा करने लगे। जो भी यात्री आते उनको प्रणाम करते, उनकी सेवा करते। लेकिन कुछ लोग जो पुराने शत्रु थे वो पत्थर लेकर मारते, जगाई मधाई तुम वही हो, और उनको जोर से मारते, जगाई मधाई के माथे से खून बहने लगे। वो जगाई मधाई जो इतने अपराधी थे वो गिरे हुए पत्थर को उठाकर वापस देते हुए, फिर से मारो हम तो बहुत अपराधी हैं। ये देखिए कितना परिवर्तन है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो ये जो महाप्रभु का क्रोध है वो भी दिव्य। 5 मिनट बचे हैं, मैं सनातन गोस्वामी के बारे में बोलूंगा क्योंकि परसों उनका तिरुभाव दिवस है। कल शाम को और परसों शाम को 5 से 7 मैंने एक सनातन गोस्वामी के बारे में बोलने का निश्चय किया है। तो कल शाम परसों शाम आप जरूर आइए, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सनातन गोस्वामी के बारे में। सनातन गोस्वामी ये भगवान के पार्षद हैं। वंदे रूप सनातन रघु युगो, ये 6 गोस्वामी जो ब्रज के हैं ये भगवान के साथ लीला करने के लिए धरती पे आए हैं। और सनातन गोस्वामी स्पेशली उनका गुण है नम्रता। हर एक वैष्णव में एक विशेष गुण होता है, हरिदास ठाकुर में है सहनशीलता, रामानंद राय में है धीरता, और सनातन गोस्वामी में है नम्रता। तृणादपि सुनिश्चय, वो इतने नम्र थे, इतने नम्र। हालांकि वो एक जमाने में नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, मंत्री बनना नहीं चाहते थे लेकिन उनको फोर्स किया गया जबरदस्ती। बाद में वो सब कुछ त्याग करके इस्कॉन मतलब महाप्रभु के मिशन में आ गए और वृंदावन में रहते। ये जो मदन मोहन मंदिर है उन्होंने निर्माण करवाया, राधा मदन मोहन के साथ उनका वार्तालाप रहता। वो मधुकरी करने गए गोकुल में, और वहाँ पर एक ब्राह्मण के घर में पुरुषोत्तम चौबे घर में मदन मोहन को देखा। मदन मोहन एक बच्चे के रूप में खेल रहे हैं और सनातन देख रहे हैं कि वो ब्राह्मण उनको डांट रहे हैं, चलो चलो अंदर चलो। तो सनातन गोस्वामी ने किताब लिखी थी हरि भक्ति विलास, उन्होंने समझाया ब्राह्मण को कि अरे भगवान को ऐसे डांटा नहीं जाता। अगले दिन भगवान स्वप्न में बोले, सनातन अभी तुम मेरी सेवा करो। और ब्राह्मण को आज्ञा दी कि कल एक महाभागवत भक्त आएंगे, आप मेरी सेवा उनको सौंप देना। अगले दिन सनातन गोस्वामी ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी को मदन मोहन दे। सनातन गोस्वामी बोले, प्रभु मेरे पास तो कोई मंदिर नहीं है, नहीं तो मेरे पास कुछ रहने के लिए कमरा है, मैं तो पेड़ के नीचे रहता हूँ। भगवान बोले, कोई बात नहीं, जैसे आप रहोगे मैं भी रहूँगा। सनातन गोस्वामी भगवान को पत्तियों का एक बिस्तर बनाते और वो बाटी जो आटे को अग्नि में डाल के बाटी बनाया जाता है वो बाटी भगवान को भोग लगाते। अब भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तो हम जो भी खाते पत्रम पुष्पम फलम बाटी जो भी दिया भगवान स्वीकार कर, लेकिन बिना नमक के। एक दिन भगवान अभी सोचे अगर हमारे यहाँ पे प्रसाद में थोड़ा नमक कम हो तो दो तीन दिन तो कंप्लेंट हो जाता है, और नमक ही नहीं हो तो क्या होगा प्रसाद। हरे कृष्णा, प्रसाद हॉल पूरा खाली, सब गोविंदा चले जाएंगे। तो एक दिन भगवान ने कंप्लेंट किया, सनातन आप इतना कर रहे हो, मेरे को सब्जी नहीं दे रहे, दाल नहीं दे रहे, कहते नमक तो दे दो। नमक, अभी आप नमक मांग रहे हो फिर शक्कर मांगोगे। मैंने पहले ही बताया था आपको, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन था कि मेरे को किताबें लिखनी है, मैं भजन करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे किचन डिपार्टमेंट के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर भगवान ने अपनी लीला की कि एक बार एक नौका थी जो मुल्तान से आ रही थी, रामदास कपूर, और वो नौका फंस गई यमुना जी में, और जब फंस गई तब उन्होंने एक प्रार्थना की। तो बोले अरे देखो सनातन गोस्वामी से प्रार्थना कर। सनातन गोस्वामी ने प्रार्थना की मदन मोहन से और नौका बच गई। तो व्यापारी बोले मैं आपको कुछ देना चाहता, आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास नमक था, वो नमक उन्होंने भगवान के लिए दिया और बाकी सारा माल बेच के मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया। भगवान सनातन गोस्वामी के बारे में कहते हैं कि आप देवताओं के द्वारा भी पूजनीय हैं, आप ऋषि मुनियों के द्वारा भी पूजनीय हैं, आप मेरे भी सलाहकार एडवाइजर के समान। यद्यपि तुम्ही हो जगत पावन, तोमा देखे पवित्र है देव मुनि गण, आप पूरे जगत के पावन करने वाले हो फिर भी इतने नम्र हैं। बहुत सालों बाद जब महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में थे, सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए गए और महाप्रभु ने एक दिन सनातन को प्रसाद के लिए बुलाया, और सनातन गोस्वामी दूर थे, और जैसे आदेश मिला सनातन गोस्वामी दौड़ते हुए आए। अब जहां उनको जाना था दो रास्ते थे जाने के, एक रास्ता था जगन्नाथ मंदिर के पास से, बहुत ठंडा रास्ता एकदम, और दूसरा था समुद्र के किनारे। मई और जून वैशाख के महीने में आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में कितनी गर्मी होती है। अभी मैं जगन्नाथपुरी से आ रहा हूँ लेकिन अभी तो गर्मी कम हो गई, लेकिन मई जून में बहुत गर्मी होती, पैरों में छाले पड़ जाते, मतलब मैं देखता हूँ कि अगर आप बिना चप्पल के जा रहे हो तो चलना नहीं, सिर्फ उड़ते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि इतना गर्मी होती। और सनातन गोस्वामी दौड़ते हुए गए, उनके पैरों में छाले पड़ गए। भगवान ने पूछा सनातन कौन पथ आए, कौन से रास्ते से आए? सनातन बोले कि मैं तो समुद्र के किनारे से। समुद्र के किनारे से क्यों आए? आपको जगन्नाथ मंदिर से आना चाहिए था। नहीं प्रभु, मैं इतना पापी हूँ, वहाँ तो जगन्नाथ जी के कई पुजारी आते जाते रहते हैं, अगर वो मुझे देखते या गलती से स्पर्श कर लेते तो अपवित्र हो जाते, इसीलिए मैं समुद्र किनारे से। तो भगवान ने तब ये श्लोक बोला, आप तो जगत को पवित्र करने वाले लेकिन फिर भी तुमने मर्यादा की रक्षण की। सनातन गोस्वामी ने कई सारी किताबें लिखे, बृहद भागवतामृत उनमें से एक है, और सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं में 64 भक्ति के अंग हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं सनातन शिक्षा में, तार मधे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, बोलिए निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन। ये महाप्रभु की शिक्षाओं का सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाक्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम कल और परसों शाम को थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे लेकिन अभी समय हो रहा है तो कंक्लूजन में बताते हैं। तार मदे सर्वश्रेष्ठ, मतलब भक्ति के 64 अंग हैं लेकिन उसमें से बेस्ट क्या है? नाम संकीर्तन। निर अपराधे, जो बिना अपराध के नाम लेता है तो उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य, भक्ति में तीन तत्व है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध तत्व के आचार्य सनातन गोस्वामी और उनके ड्यूटीज हैं मदन मोहन, अभिधेय के आचार्य रूप गोस्वामी हैं और ड्यूटीज हैं गोविंद देव, और प्रयोजन के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी हैं और ड्यूटीज हैं गोपीनाथ। तो सनातन गोस्वामी की कृपा से ही हम नम्र बन सकते हैं, उनकी कृपा से ही हम भगवान के साथ अपने संबंध को जान सकते हैं। तो हम उनसे आज कल परसों ये तीन दिन है जो हम उनका गुणगान कर रहे हैं, तो हम सनातन गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें जो त्रिनादपि सुनिश्चित जो गुण जो बहुत आवश्यक है वो तो थोड़ा सा 1% भी मिल जाए तो हमें भी नाम में रुचि मिल जाए, हम भी महाप्रभु की सेवा कर सकें। सब लोग 2 मिनट आँख बंद करके प्रार्थना करें भगवान से कि हम सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों में चल के पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न या समय तो हो गया लेकिन जस्ट एक प्रश्न हो सकता है। यस प्रभु जी।
आपने बहुत सुंदर प्रवचन किया, मैंने आपका नाम सुना था यूट्यूब पे सुना था, लेकिन आज मुझे लगा आपको लेक्चर होगा तो मुझे बहुत हर्ष हुआ कि आपको लेक्चर सुनने का मौका मिलेगा, इसके लिए धन्यवाद आपका। मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि अपराध है, हम वैष्णव के प्रति कभी मन से अपराध होता है, कोई गलती वैष्णव के देखते हैं तो हमें लगता है ये गंदे हैं, फिर भी मन में हमारे गलत भाव आता है कि इनसे हमें बात नहीं करना चाहिए, इनकी एक्टिविटी ऐसी है, लेकिन भक्त बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा देखा लेकिन हमारा मन दूषित हो जाता है, इससे कैसे बचे हम?
कलयुग में नहीं चाहने पे हो जाता है मानसिक अपराध, तो क्या करो कि मनी मन वैष्णव से माफ़ी मांग लो और उसकी कोई सेवा कर लो, वो चाहे सेवा स्वीकार नहीं करे कोशिश करो जिसके प्रति अपराध किया है उसकी सेवा कर लो। और जनरली अपराध तब होते हैं जब हमारे अंदर अभिमान होता है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर दोष है तो फिर मैं दूसरों में दोष देखूँगा ही नहीं। जैसे एक गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि एक छाननी है जो गेहूं के लिए छानने के लिए तो छेद है और एक सुई की नोक है, तो छाननी सुई को बोले देखो तुम्हारे अंदर छेद है, देखो देखो छेद है, और अब इसके अंदर कितने सारे छेद हैं वो ध्यान नहीं दे, तो बेस्ट है कि जज नहीं करना। दोष तो है, 90% डिवोटीज में दोष होंगे क्योंकि हम सब अस्पताल में हैं, अभी अस्पताल में मैं भी मरीज हूँ आप भी हो, आप बोलोगे मैं उसी अस्पताल में जाऊँगा जहाँ कोई मरीज नहीं हो तो फिर ऐसा हॉस्पिटल हो नहीं सकता। तो किसी को वॉमिटिंग आ रहा है, किसी को बहुत सारे लूज मोशन हो रहे हैं, किसी को नाक से आईवी दिया जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, सभी हम सब एक हॉस्पिटल में, प्रभुपाद डॉक्टर हैं और प्रचारक भी, मैं प्रचारक हूँ, वो क्या है वो भी, मैं भी पेशेंट हूँ, लेकिन डॉक्टर कम है ऐसे सीनियर पेशेंट को ही डॉक्टर बना दिया है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। दूसरों में दोष नहीं देखना है, कोई दोष है भगवान से प्रार्थना करनी है कि इसके दोष को दूर कर। ठीक, आज शाम नहीं कल शाम से, कल और परसों दो दिन। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंदे।